नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना हुई। राष्ट्रपति वहां द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तीन वर्ष पूरे होने की सराहना की। कहा, योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में वृद्धि हो रही, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। पोलैंड ने अवैध प्रवासन से निपटने के लिए देश में शरण के लिए आवेदन करने के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित करने की योजना की घोषणा की। टेबल टेनिस में आहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की भारतीय जोड़ी ने कजाकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में महिला युगल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। और शारजाह में महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना हो गई। भारत के किसी भी राष्ट्रपति की इन तीन अफ्रीकी देशों की ये पहली यात्रा है। एक वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगी। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी तीन देशों की यात्रा अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति आज देर शाम भारतीय समय अनुसार लगभग 9 बजे अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस पहुंचेंगी। अल्जीरिया में तीन दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैबोन और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे मकाम इजाहिद और शहीद स्मारक का भी दौरा करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति का भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया जाएंगी और अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तीन वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा है कि इस योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में वृद्धि हो रही है, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार रूप ले रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गतिशक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के एकीकरण से संभार तंत्र मजबूत हुआ है, विलंब में कमी आई है और बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत आज ही के दिन 2021 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों की आवाजाही और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इस योजना में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और इनके कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। इस पहल से विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य माल ढुलाई की लागत को कम करना, भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में लाना और डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बैठक इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वे अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। श्री बिरला ने बताया कि वे अंतर संसदीय संघ की निर्णय लेने वाली शासी परिषद की बैठकों में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त वे अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों से भी भेंट करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री बिरला जिनेवा में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य सांसद शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से इस महीने की 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय भवन, राजभवनों, राजनिवासों, विधान परिषद भवनों, विधानसभाओं और उच्च न्यायालयों पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज नहीं लगाया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने देश में अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए कुछ शरण अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। वार्सो में कल सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री टस्क ने यूरोपीय देशों से इस निर्णय को स्वीकारने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश और मानव तस्कर शरण के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री टस्क ने कहा कि सरकार का देश में आने वाले लोगों पर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अवैध अप्रवासन पर लगाम लगाएगी। इसराइल के रक्षा बलों ने कल बताया कि देश में लगभग 90 रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं और उनमें से अधिकांश लेबनान से छोड़ी गईं। कुछ मिसाइलें हाइफा खाड़ी को निशाना बनाकर छोड़ी गई थीं, जिसमें हाइफा और अक्को बंदरगाह शहर भी शामिल थे, जबकि अन्य मिसाइलों ने गैलिली क्षेत्र को निशाना बनाया। इजरायली सेना के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दूसरी ओर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने इसराइल द्वारा लेबनान पर हमले बढ़ाए जाने के बाद से कम 1,645 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने रावलपिंडी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी है। ये निर्णय राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के प्रस्तावित सम्मेलन को देखते हुए लिया गया है। सम्मेलन को देखते हुए इस्लामाबाद में सेना की तैनाती की गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में विवाह भवन, रेस्तरां और कैफे 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
टेबल टेनिस में भारत की शीर्ष महिला जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय जोड़ी ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उधर क्रिकेट में शारजा में महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से होगा। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत न्यूजीलैंड से एक मैच हार चुका है, इसलिए सेमीफाइनल की दावेदारी के लिहाज से आज का मुकाबला भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रुप ए में सेमीफाइनल में दूसरे स्थान के लिए न्यूजीलैंड और भारत दौड़ में हैं। दोनों टीमों के पास 4-4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड भारत से पीछे है। ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका 6 अंक के साथ तालिका में पहले और वेस्टइंडीज 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है।
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समापन के बाद आज विजयदशमी पर मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया है। कल भी कुछ घरेलू पूजा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया था। प्रशासन ने विसर्जन के लिए महत्वपूर्ण नदियों और तालाबों के घाटों पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। बाजे कदमतला घाट, दोई घाट, अहिरी टोला घाट, बाग बाजार घाट और रतन बाबू घाट समेत गंगा के घाटों को मूर्ति विसर्जन के लिए सजाया गया है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए नदी यातायात पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी पर भारत बांग्लादेश संयुक्त विसर्जन कार्यक्रम देखने के लिए उत्तर 24 परगना के टाकी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके अलावा कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF और BGB पुलिस को तैनात किया गया है। हालांकि कोलकाता जाने वाले पूजा पंडालों की बड़ी संख्या में मूर्तियों का विसर्जन कार्निवल में भाग लेने के बाद मंगलवार को किया जाएगा। उधर असम में भी आज मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने विसर्जन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मां दुर्गा को विदा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पूजा पंडालों में पहुंचे। गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी में उत्साह के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। हिमाचल के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा समारोह आज से शुरू हो रहा है। भगवान रघुनाथ की विशाल रथ यात्रा के साथ एक सप्ताह तक चलने वाले कुल्लू दशहरे की औपचारिक शुरुआत होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा शाम लगभग 4 बजे शुरू होगी।
यात्रा के दौरान कुल्लू के देवता भगवान रघुनाथ की मूर्ति को सुल्तानपुर में उनके मंदिर से ढालपुर मैदान लाया जाएगा। यहां से मूर्ति को रथ में रखकर उनके अस्थायी शिविर तक ले जाया जाएगा। यहां वे अगले 7 दिन तक विराजमान रहेंगे। देवी हिडिम्बा सहित दूर दराज के क्षेत्रों से लगभग 300 देवी देवताओं की मूर्तियों को मेले के लिए कुल्लू लाया जा चुका है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ढालपुर मैदान में रथ यात्रा में भाग लेंगे और दीप जलाकर लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त वे प्रदर्शनी मैदान पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियां भी देखेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित रहेंगे। कुल्लू दशहरा समारोह के दौरान 25 देशों के सांस्कृतिक समूह प्रस्तुतियां देंगे और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। 19 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा समारोह के अंतिम दिन कुल्लू कार्निवल आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन।
केरल में आज विद्यारंभम उत्सव मनाया जा रहा है। इसे औपचारिक शिक्षा की ओर पहला कदम माना जाता है। इस अवसर पर नृत्य और संगीत शिक्षा की भी शुरुआत होती है। इस अवसर पर कई स्थानों पर शिक्षकों, लेखकों, विद्वानों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने शुरुआत की। विद्यारंभम के लिए कहीं सोने के छल्ले को शहद में डुबोकर बच्चों की जीभ पर लिखा गया तो कहीं बच्चों से थाल पर लिखवाया गया। विद्यारंभम का आयोजन घरों के अतिरिक्त तिरूर में तंचन प्रांबू और कई मंदिरों में भी हुआ। इनमें पाड़ चिकड्डू, चोट निक्करा, परवरू और अत्तकल शामिल हैं। हाल के वर्षों में केरल में कई धर्मों के लोगों ने विद्यारंभम को अपनाना शुरू किया है। असम में आज सुबह 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र मुख्य रूप से असम के मध्य क्षेत्रों में था। हालांकि अब तक भूकंप में किसी के हताहत होने और संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित उदलगुड़ी जिले में आज सुबह 7:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी आज सुबह 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र गुंडोह था। सुबह 6:14 पर इसके झटके महसूस किए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन दिवस है। ये दिवस आपदा शमन में शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं से बच्चों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल की अपील की है। उन्होंने कहा है कि समाज और अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विशेषकर बच्चों पर आपदा का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित होती है। श्री गुतरेश ने ऐसे स्कूल बनाने की अपील की जो आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन दिवस का विषय है सशक्त भारत के लिए अगली पीढ़ी का सशक्तिकरण। गुजरात के कुछ हिस्सों में आज भी तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन तक कर्नाटक के भीतरी इलाकों, केरल, माहे और तमिलनाडु में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना हुई। राष्ट्रपति द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की। कहा, योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में वृद्धि हो रही है, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार रूप ले रही है। पोलैंड ने अवैध प्रवासन से निपटने के लिए देश में शरण के लिए आवेदन करने के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित करने की योजना की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।